arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि।
फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव के विभिन्न अधिकारों से युक्त 17 धाराओं वाला एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जो इस प्रकार था। पहला, सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, अतः उनके अधिकार भी समान हैं। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य मानव के प्राकृतिक और जन्मजात अधिकारों की सुरक्षा करना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा आदि का अधिकार। तीसरा, राजसत्ता या संप्रभुता का मूल स्रोत राष्ट्र में ही निहित है। देश की जनता राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग उसी सीमा तक कर सकता है जिससे समाज के अन्य सदस्यों को उससे बाधा न हो। पांचवा, समाज के लिए हानिप्रद कार्यों को ही कानून रोक सकता है। छठवा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। जनता के प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। सभी व्यक्तियों को योग्यता अनुसार राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार है। सातवां, न्याय की दृष्टि से सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंद नहीं किया जा सकता है। आठवां, जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध न हो जाए उसे निर्दोष माना कानूनी तौर पर अपराध सिद्ध होने पर ही दंड दिया जा सकता है। नवा, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सभी स्वतंत्र हैं। धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए भी किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है। शर्त यह है कि अभिव्यक्ति सार्वजनिक हितों के विरुद्ध न हो। दसवां, प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता है, परंतु यह स्वतंत्रता कानून की सीमाओं के अंतर्गत ही दी जा सकती है। ग्यारहवां, जनशक्ति का संगठन सार्वजनिक हित में हो, न कि उन्हीं का हित जिन्हें जनशक्ति सौंपी गई है। बारहवां, सभी नागरिकों पर समान रूप से उनकी आर्थिक स्थिति और समय के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। तेरहवां, सभी नागरिकों को राज्य से सहायता प्रदान करने का अधिकार है। चौदहवां, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण राज्य द्वारा बिना क्षतिपूर्ति किए नहीं किया जाना चाहिए। पंद्रहवां, समाज को सार्वजनिक पदाधिकारियों से उनके कार्य संबंधी विवरण प्राप्त करने का अधिकार है। सोलहवां, जिस समाज के पास अधिकारों की गारंटी या प्रत्याभूति नहीं है और न ही शक्तियों का विभाजन है, तो ऐसे समाज के पास कोई संविधान नहीं है। सत्रहवां, संपत्ति रखने का प्रत्येक नागरिक का अखंड अधिकार है। मानव अधिकारों की घोषणा में त्रुटियां अथवा अभाव। इस घोषणा पत्र में कुछ त्रुटियां रह गई थी और ये त्रुटियां इस प्रकार हैं। पहला, घोषणा पत्र में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। दूसरा, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षा एवं संस्कृति के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। चौथा, नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार सीमित मात्रा में दिया गया। राज्य द्वारा किसी भी बहाने संपत्ति का अपहरण किया जा सकता था। पांचवा, सभी लोगों को मताधिकार के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया गया। अधिकारों की घोषणा का महत्व। इस घोषणा पत्र ने कानून के सम्मुख सबकी समानता, सार्वजनिक सेवाओं में सभी के लिए समान अवसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय करों के बोझ का समान वितरण जैसे मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह घोषणा पत्र गणतांत्रिक और संसदीय विकास में राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सोपान था। सार के अन्य संविधान के निर्माण में इसे प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कालांतर में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का यह छोटा सा प्रपत्र विश्व के महान ग्रंथालयों से भी बढ़कर और नेपोलियन की सैनिक शक्ति से भी अधिक बलशाली प्रतीत हुआ। युद्ध और राजतंत्र का अंत। फ्रांस की जनता को राष्ट्र की रक्षा के लिए और क्रांति को सफल बनाने के लिए विदेशी राष्ट्रों से युद्ध में फंसना पड़ा। फ्रांस की क्रांति के पश्चात बहुत से पादरी और कुलीन वर्ग के लोग फ्रांस छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए और वहां की सरकारों को क्रांति के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। सम्राट और रानी भी भेष बदलकर फ्रांस से भाग रहे थे, किंतु इन्हें पहचान लिया गया और इन्हें बंदी बनाकर देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय सभा के पश्चात फ्रांस में नई विधानसभा बनी। इस सभा ने उन सभी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर ली जो फ्रांस छोड़कर चले गए थे। ऑस्ट्रिया, प्रशा और सेवाय यानी इटली में राजतंत्र था और इन तीनों राज्यों ने फ्रांस में पुनः राजतंत्र बहाल करने के लिए तथा फ्रांस को समाप्त करने हेतु फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया। फलस्वरूप फ्रांस को इन तीनों राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति से युद्ध लड़ना पड़ा। फ्रांस की विधानसभा में राजतंत्र की समाप्ति कर दी और नई संस्थाओं का निर्माण फ्रांस में स्वतंत्रता एवं समानता के आधार किया गया। राजा लुई 16वां एवं रानी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और इन दोनों को 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई। तत्पश्चात फ्रांस ने ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसी समय फ्रांस में एक उग्र दल का उदय हुआ जिसे जैकोबिन्स के नाम से जानते हैं। जैकोबिन्स दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास करता था। इस दल ने फ्रांस में क्रांति विरोधी शक्तियों को बड़ी निर्दयता एवं निरंकुशता से कुचला। इस दल ने फ्रांस में अपनी सरकार बनाई और 14 महीने में लगभग 17,000 लोगों को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। इनमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो पूरी तरह से निर्दोष थे। इसी कारण कुछ लोगों ने जैकोबिन्स दल के कार्यकाल को आतंक का राज्य घोषित किया। एक नया संविधान बनाया गया। इसी समय सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और नेपोलियन का उदय एक नई शक्ति के रूप में फ्रांस में सेना के माध्यम से हुआ। कुछ समय के पश्चात 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांसिस गणराज्य का सम्राट घोषित।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।